आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर, आपकी और मेरी एक्टिविटीज के अंदर, आपकी और मेरी हर चीज के अंदर एक बात अपने आप से बार बार पूछते रहिएगा, जो फायदा मैं अपने आप को पहुंचाऊंगा वो तो हुब्बे नफ्स की खातिर करूंगा ही। आप मिसाल के तौर पे खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? हुब्बे नफ्स की खातिर खाएंगे। भूखा कौन मरता है? कौन भूखा मरेगा? मगर ये जबर में बेचारा मर गया। हुब्बे नफ्स की खातिर आप कमाई करेंगे, हुब्बे नफ्स की खातिर। हुब्बे नफ्स मजमूम नहीं है यहाँ पे, बुरा नहीं है। आप अपने आप को पसंद करते हैं, खुदा ने आपको खल्क इस पे किया है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं। आप आपको जन्नत में देखना चाहते हैं, दोजख में नहीं देखना चाहते, आप अपने आप को पसंद करते हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, इसी हद तक हुब्बे नफ्स के अंदर रहते हुए दूसरों की जात को मुझसे फायदा क्या मिला? क्या मिला दूसरों को मुझसे? भाई मैंने जिंदगी के 25 साल गुजार लिए, 30 साल गुजार लिए, 40, 50, 60, 70, दूसरों को क्या दिया? अच्छा, मैं दूसरों को कुछ चीजें ऐसी देता हूं जिसका एवज उनसे ले लेता हूं। मैं एवज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, बिला एवज की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूं ताकि किसी और के ऊपर ना रखना पड़े। ऐसा हम यहाँ पे हाजिर हुए, आपने हमें एहतराम दिया, ये एक एवज हो गया। ये काम मैं बिला एवज काउंट नहीं करूंगा। क्यों? एक एवज तो मिल गया। क्या मिला? एहतराम मिला। एहतराम बहुत बड़ी चीज होती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो कुछ चीजें होती हैं जिसका हमें जिंदगी में एवज मिल जाता है, चाहे हम कबूल ना करें, चाहे मैं कबूल ना करूं कि ये एवज है, लेकिन होता है एवज एक्चुअली। बिला एवज क्या किया? ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा। अहले बैत की तालीमात फरमाए, हम तुम्हें खिलाएंगे, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम सिर्फ खुदा के चेहरे की खातिर, अगर मैं उर्दू तर्जमा कर डालू, हम सिर्फ खुदा की खातिर तुम्हें खिलाएंगे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, ना हम तुमसे जजा चाहते हैं, ना हत्ता शुक्रिया चाहते हैं, नहीं चाहते। ये बिला एवज है। आप अपनी जिंदगी में बार बार अपने आप से एक सवाल करते रहिएगा, बिला एवज क्या दिया? और यदि मैं आपकी खिदमत में पॉइंट चर्च कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत कीजिए, आपकी ज़िंदगी कहीं और टर्न करेगी, फिर बहुत अच्छी जगह के ऊपर। बार बार अपने आप से पूछते रहिएगा, मेरी ज़िंदगी से दूसरों को बिला एवज क्या मिला? फर्ज करिए मैंने एक कारखाना खोला जिसमें 400 आदमी काम कर रहे हैं, ये वो चीज़ें जो मैंने दी है? नहीं। ये बिला एवज कहाँ है? अगर वो लोग जॉब ना करते, काम ना करते, तो मैं उन्हें एक पैसा भी देता? नहीं। कोई आदमी क्या, मैंने कारखाने में खिदमत की है, ठीक है खिदमत की है, लेकिन अगर वो तुम्हें तनख्वाह ना देता तो तुम करते? नहीं। अलबत्ता मैं ये कबूल करूंगा कि कुछ लोग कहेंगे भाई ये एवज पूरा एवज नहीं है, मैंने इससे ज्यादा किया है, हाँ ये बात सही है। लेकिन आप कोशिश करें कुछ काम जिंदगी में ऐसे करें जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे और आपको कोई एवज ना मिले। बिला एवज करने की कोशिश करें। ये जो आपके काम होंगे ना, एक फाइनेंस की टर्म में एक टर्म इस्तेमाल होती है ना, एसेट्स। एसेट्स आपके सरमाया, इस सरमाए की बुनियाद पे आपकी कमाई होती है, ये आपके एसेट्स होंगे, आपकी लाइफ के एसेट्स। खुदा इन एसेट्स की बुनियाद पर नहीं मालूम ऐसे ऐसे आपके खुदा के काम करके देगा जो कोई और नहीं कर सकेगा, खुदा करवा देगा। क्यों? वो देखेगा इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। कौन सी चीज़ें एसेट्स होती हैं इस मामले के अंदर? वो आपकी खिदमतें जो आपने दूसरों की हैं बिला एवज की हैं, बिला एवज की हैं। जो हमारे यहाँ मशहूर है एक रिवायत कि भाई तुम जिस हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, बिला एवज। अच्छा, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पर्सनल लेवल पर अर्ज़ कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर अर्ज़ कर रहा हूँ। सोसाइटी को इसका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? सोसाइटी का जो यूनिट है वो आपके सिवा कौन है? आप और मैं ही तो यूनिट है सोसाइटी का। हम सोसाइटी को अलहदा क्रिएशन समझें या ना समझें, सोसाइटी का यूनिट बहरहाल आप ही हैं। अगर आपने ये कहा कि मैं दूसरों को बेलाएवस कुछ ना कुछ सर्विसेज दूंगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा। अलबत्ता इसी के अंदर रखते हुए, ताकि फिर इसको अलहदा से डील ना करना पड़े, वो ये है कि अपने खलूस को कभी ना कभी जांचते रहिएगा। शैतान धोखे देता है। कभी ऐसा होता है, नाउज़ बिल्लाह ताला, हमारी आदत रियाकारी बन चुकी होती है, हमें पता नहीं होता। क्यों? माशरे के रस्म व रिवाज ने उस रियाकारी को, गैर अल्लाह होने को कबूल कर लिया होता है, बुरा भी नहीं समझते। مثلا فرض فرمائیے میں دو رکعت نماز فجر پڑھوں اور آپ کے سامنے آ کر یہاں پر کہوں میں ہر روز صبح دو رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، آپ کو برا لگے گا ایک ٹائم پر، یہ کیا ہو رہا ہے، پڑھتا ہے تو خدا کے لیے پڑھتا ہے، یہاں کیوں بول رہا ہے یہ؟ اچھا اگر ہر روز لوگ یہی کرتے رہیں کچھ وقت کے بعد کیا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ریاکاری ہے۔ ایک بات میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ریاکاری کے بہت سارے ایلیمنٹس قبول کر لیے گئے ہیں، انہیں کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا کہ یہ ریاکاری ہیں۔ میں ان کو نام بھی نہیں لینا چاہتا، بعض جگہ پہ نام لیتا ہوں لوگوں کو بہت برا لگتا ہے چونکہ رسم و رواج کا حصہ بن چکے ہیں، نہیں قبول کر پاتے کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ آپ چیک کرتے رہیے گا آپ کی لائف میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی، خلوص قیمت ہے، خلوص کی قیمت ہے، بلکہ خلوص کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ تو آپ اپنی لائف میں یہ چیک کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسڈس کو اندر سے گھن لگا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں معلوم، خدا نہ کرے کسی نے مثال کے طور پر چاول کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں کہ سخت وقت میں کام آئیں گی، جب وہ سخت وقت میں چاولوں کو لینے کے لیے گیا تو دیکھا گھن لگا ہوا ہے، کیڑے لگے ہوئے، اب کیا کرے بیچارہ، نہ جمع کرنے کا ٹائم ہے نہ کیڑوں کے ہوتے ہوئے کوئی فائدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسڈس کو گھن لگ جائے اور آپ بڑھاپے تک پہنچیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایسڈس تو سارے کے سارے کیڑے کی نظر ہو گئے۔ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے میرے اور آپ کے اندر، اس سے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔